नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एक्सपेक्टिंग बेटर अर्थशास्त्री एमिली ओस्टर की साक्ष्य आधारित गर्भावस्था मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक उन परिचित नियमों की जांच करती है जो गर्भवती महिलाओं को अक्सर बिना पर्याप्त कारण बताए दिए जाते हैं, जैसे कॉफी, सुशी, शराब, व्यायाम, प्रसव पूर्व जांच और प्रसव संबंधी निर्देश। ओस्टर का उद्देश्य चिकित्सकीय सलाह को खारिज करना नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद शोध की गुणवत्ता, जोखिम की मात्रा और निर्णय के व्यावहारिक परिणामों को समझना है। अर्थशास्त्र की लागत लाभ पद्धति के सहारे वह पूछती हैं कि किसी निषेध का वास्तविक लाभ कितना है, जोखिम कितना है, और अलग परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए उत्तर क्यों बदल सकते हैं। पुस्तक का मूल आग्रह है कि डर, अपराध बोध और एक जैसे नियमों के बदले स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। हालांकि इसके कुछ निष्कर्ष, विशेषकर गर्भावस्था में अल्कोहल के बारे में चर्चा, विवादित रहे हैं, इसलिए इसे चिकित्सक की व्यक्तिगत सलाह का विकल्प नहीं बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने और उपलब्ध प्रमाण को समझने का उपकरण मानना अधिक उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गर्भावस्था के नियमों को प्रमाण की गुणवत्ता से परखना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि हर प्रचलित गर्भावस्था नियम समान स्तर के प्रमाण पर आधारित नहीं होता। कुछ सलाह मजबूत जैविक समझ और लगातार शोध निष्कर्षों से समर्थित होती है, जबकि कुछ नियम पुराने एहतियात, सीमित आंकड़ों या जोखिम को अत्यंत सरल बनाकर बताने की प्रवृत्ति से बने हैं। ओस्टर पाठक को यह भेद समझने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी अध्ययन में केवल दो चीजों का साथ दिखना यह सिद्ध नहीं करता कि एक ने दूसरी को पैदा किया। उदाहरण के लिए, किसी भोजन, पेय या व्यवहार को चुनने वाली महिलाओं की आय, स्वास्थ्य, पूर्व आदतें और चिकित्सा सुविधा भी परिणामों से जुड़ी हो सकती हैं। ऐसे मिश्रित कारकों को अलग किए बिना कठोर निष्कर्ष निकालना कठिन है। यह दृष्टि पुस्तक को सामान्य सलाह पुस्तकों से अलग बनाती है, क्योंकि यह केवल निष्कर्ष नहीं देती बल्कि निष्कर्ष तक पहुंचने की विश्वसनीयता पर भी ध्यान देती है। फिर भी पाठक के लिए यह याद रखना जरूरी है कि शोध का मूल्यांकन जटिल काम है। व्यक्तिगत बीमारी, दवाएं, गर्भावस्था की अवस्था और पूर्व जोखिम सामान्य आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः प्रमाण समझना स्वायत्त निर्णय में मदद करता है, लेकिन प्रसूति विशेषज्ञ के साथ संवाद की आवश्यकता समाप्त नहीं करता। दूसरा, जोखिम की मात्रा और व्यक्तिगत लागत लाभ निर्णय। ओस्टर गर्भावस्था को शून्य जोखिम की तलाश के बजाय जोखिमों के बीच चुनाव के रूप में देखती हैं। उनका तर्क है कि किसी गतिविधि को केवल संभव जोखिम के आधार पर निषिद्ध कहना पर्याप्त नहीं है। यह भी जानना चाहिए कि जोखिम कितना बड़ा है, किस मात्रा या परिस्थिति में बढ़ता है और उस पाबंदी की कीमत क्या है। यही अर्थशास्त्रीय लागत लाभ ढांचा है। उदाहरण के लिए, कैफीन पर चर्चा में पुस्तक पूर्ण निषेध के बजाय सेवन की मात्रा और उपलब्ध अध्ययनों के निष्कर्षों को संदर्भ में रखती है। इससे संदेश यह नहीं निकलता कि हर व्यक्ति के लिए एक ही सीमा उचित है, बल्कि यह निकलता है कि चिकित्सकीय निर्णय में जोखिम की निरपेक्ष मात्रा, व्यक्ति की प्राथमिकताएं और स्वास्थ्य स्थिति शामिल होनी चाहिए। यह ढांचा चिंता घटा सकता है, क्योंकि छोटे और बड़े जोखिमों को एक ही भाषा में नहीं रखा जाता। साथ ही इसकी सीमा भी है। जब किसी संभावित हानि का परिणाम गंभीर हो और प्रमाण अधूरा हो, तब सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देश अक्सर अधिक सावधानी चुनते हैं। इसलिए व्यक्तिगत सुविधा को आंकड़ों के साथ तौलना उपयोगी है, पर अनिश्चितता को सुरक्षा का प्रमाण मान लेना गलत होगा। पुस्तक का सबसे उपयोगी व्यावहारिक पाठ है कि डॉक्टर से जोखिम कितना, किसके लिए और किस प्रमाण के आधार पर जैसे प्रश्न पूछे जाएं। तीसरा, भोजन, कैफीन और अल्कोहल पर एक जैसे निषेधों की पुनर्समीक्षा। एक्सपेक्टिंग बेटर का सबसे चर्चित हिस्सा भोजन और पेय से जुड़े निषेधों की जांच है। ओस्टर बताती है कि कई सलाहों में वास्तविक खतरे का स्रोत समझे बिना वस्तु का नाम ही निषिद्ध कर दिया जाता है। मसलन, कुछ खाद्य पदार्थों के मामले में चिंता भोजन की श्रेणी नहीं बल्कि जीवाणु संक्रमण, तैयारी, भंडारण या पकाने की विधि हो सकती है। इस अंतर को समझने से पाठक अधिक लक्षित सावधानी अपना सकते हैं। कैफीन पर पुस्तक सीमित या मध्यम सेवन और अत्यधिक सेवन के बीच अंतर पर जोर देती है तथा प्रमाण को पूर्ण त्याग के सरल नियम से अधिक बारीकी से देखती है। अल्कोहल संबंधी अध्याय विशेष रूप से विवादास्पद है। ओस्टर उपलब्ध अवलोकनात्मक शोध की सीमाओं के आधार पर हल्के सेवन पर कठोर दावों को चुनौती देती है, लेकिन प्रमुख चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं गर्भावस्था में अल्कोहल से बचने की सलाह देती हैं, क्योंकि सुरक्षित मात्रा स्थापित नहीं है और भ्रूण पर प्रभाव के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए इस अध्याय को अनुमति के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए। इसका अधिक जिम्मेदार उपयोग यह समझना है कि शोध निष्कर्षों की व्याख्या कैसे होती है और अपने चिकित्सक से व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा क्यों जरूरी है। चौथा, प्रसव पूर्व जांच उम्र और संभावनाओं को संदर्भ में रखना। पुस्तक प्रसव पूर्व जांच के विषय में भी निश्चित उम्र सीमाओं और सामान्यकृत सलाह की आलोचनात्मक समीक्षा करती है। पोस्टर का जोर इस बात पर है कि जांच का निर्णय केवल मां की उम्र या किसी एक नियम से तय नहीं होना चाहिए। उम्र के साथ कुछ गुणसूत्र संबंधी स्थितियों की संभावना बदलती है, लेकिन किसी व्यक्ति का निर्णय जांच की सटीकता, गलत सकारात्मक या गलत नकारात्मक परिणामों की संभावना, आगे की जांच की प्रकृति और परिणाम जानने के बाद उपलब्ध विकल्पों पर निर्भर करता है। यह चर्चा पाठक को संभावना और निश्चितता में फर्क करना सिखाती है। किसी स्क्रीनिंग परिणाम का अर्थ निदान नहीं होता और किसी औसत जोखिम का अर्थ व्यक्तिगत भविष्यवाणी भी नहीं होता। इसी तरह जांच चुनना केवल चिकित्सकीय गणना नहीं है। कुछ लोगों के लिए अनिश्चितता कम करना प्राथमिकता होगी, जबकि कुछ लोग आक्रामक जांच से जुड़े छोटे जोखिमों से बचना चाहेंगे। पुस्तक इस मूल्य आधारित अंतर को वैध मानती है। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि पाठक जांच के प्रकार, उसके उद्देश्य और परिणामों की व्याख्या के बारे में अधिक सटीक प्रश्न तैयार कर सके। हालांकि आनुवंशिक परामर्श और वर्तमान चिकित्सकीय दिशानिर्देश आवश्यक हैं, क्योंकि जांच तकनीक और अनुशंसाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। अंत में, प्रसव और मातृ देखभाल में जानकारीपूर्ण भागीदारी। पुस्तक गर्भावस्था को केवल खानपान की सूची तक सीमित नहीं रखती, बल्कि प्रसव के आसपास होने वाले निर्णयों पर भी ध्यान देती है। इसमें मतली, वजन, बेड रेस्ट, प्रसव प्रेरण, सिजेरियन और सहायक देखभाल जैसे विषयों पर उपलब्ध प्रमाण को समझने का प्रयास है। इसका व्यापक संदेश यह है कि उपचार या हस्तक्षेप को स्वचालित रूप से अच्छा अथवा बुरा नहीं मानना चाहिए। सही प्रश्न यह है कि किस परिस्थिति में उसका लाभ संभावित हानि से अधिक है। उदाहरण के लिए, प्रसव में सहयोग देने वाली डूला की भूमिका पर चर्चा यह दिखाती है कि निरंतर सहायता अनुभव और कुछ प्रसव परिणामों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह किसी जटिल गर्भावस्था में प्रशिक्षित चिकित्सा टीम का विकल्प नहीं है। इसी प्रकार बेड रेस्ट या प्रेरण जैसे मुद्दों पर निर्णय मां और भ्रूण की स्थिति, गर्भकाल, चिकित्सकीय संकेतों और स्थानीय देखभाल व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। पोस्टर की उपयोगी चुनौती यह है कि मरीज को निष्क्रिय आदेश पाने वाले व्यक्ति के बजाय निर्णय प्रक्रिया का सहभागी माना जाए। फिर भी पुस्तक का आंकड़ा, केंद्रित स्वर, भावनात्मक तैयारी, संबंधों और जन्म अनुभव की व्यक्तिगत संवेदनाओं को अपेक्षाकृत कम स्थान देता है, इसलिए इसे प्रसव योजना का आधार बनाने के बजाय संवाद और प्रश्नों का सहायक स्रोत मानना संतुलित दृष्टि है। निष्कर्ष में, एक्सपेक्टिंग बेटर उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली विरोधाभासी सलाह से परेशान है और हर नियम के पीछे का तर्क जानना चाहते हैं। पहली बार माता पिता बनने वाले पाठकों को इससे विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि पुस्तक भोजन, लक्षण, जांच और प्रसव संबंधी फैसलों को प्रश्न पूछने योग्य मुद्दों में बदल देती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले या पहले से जटिल गर्भावस्था का अनुभव रखने वाले पाठक भी इसके प्रमाण, जोखिम और प्राथमिकताओं वाले ढांचे को उपयोगी पा सकते हैं, बशर्ते वे इसे व्यक्तिगत चिकित्सकीय मार्गदर्शन का विकल्प न माने। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह भय आधारित निषेधों की सूची देने के बजाय शोध की सीमाएं, सहसंबंध और कारण संबंध का अंतर तथा छोटे और बड़े जोखिमों की तुलना सामने लाती है। यही इसे पारंपरिक सप्ताह दर सप्ताह गर्भावस्था पुस्तकों से अलग करता है। वे पुस्तकें अक्सर क्या करना है बताती हैं, जबकि ओस्टर यह पूछती हैं कि हम ऐसा क्यों मानते हैं और प्रमाण कितना भरोसेमंद है। फिर भी इसकी सीमाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। पुस्तक के कुछ निष्कर्ष विवादित हैं, विशेषकर अल्कोहल पर, और चिकित्सा दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रहता है। यह पुस्तक सर्वोत्तम तब काम करती है जब पाठक इसे अपने प्रसूति विशेषज्ञ के साथ अधिक स्पष्ट बातचीत, अपनी परिस्थितियों की समझ और सूचित सहमति के लिए इस्तेमाल करे। इसका स्थायी योगदान किसी एक सार्वभौमिक उत्तर में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विचारपूर्ण बनाने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एमिली ऑस्टर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।